मैंने गोचर के अनुसार आपको बताया था थोड़े समय पहले कि विश्व में एक बड़ी घटना घटेगी किसी बड़े नेता के साथ में, वो हो चुका है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संयम रखेंगे। ऐसे में कुल्लू में कहिए या फिर अमरनाथ में हुई घटना प्राकृतिक घटना है, परंतु ऐसी दुखद घटनाओं के लिए हृदय से उन सभी को नमन करता हूं जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए काल के ग्रास हो गए। उन्हें नमन है, भोलेनाथ उन पर कृपा बनाए, उन्हें अपनी छत्र छाया मिले, ऐसी कामना करते हुए जो लोग घायल हुए हैं दुआ करता हूं कि वह जल्दी ठीक हो जाए। ज्योतिषाचार्य का काम है केवल और केवल ग्रहों की गणना के अनुसार क्या होगा, किस प्रकार होगा, ये अवगत कराना। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं या फिर विज्ञान के नाम पर पराविज्ञान का मजाक मखोल बनाते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये सारी गणनाएं ज्योतिष आधार पर की जाती हैं, चाहे वह नासा करे या कोई भी करे। मैंने आपके लिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं पहले भी बताई थी कि विश्व में क्या क्या होगा, दूरगामी स्थितियों को भी आपके लिए अवगत कराया था। मैंने यहां तक आपको बताया था कि जिस तरह से धरती पर ग्लोबिंग वार्मिंग हो रही है या प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार से वातावरण से छेड़छाड़ या फिर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये मनुष्य के लिए नहीं प्रकृति के लिए भी घातक होने वाला है। और आने वाले लगभग 50 वर्षों में धरती पर जल प्रलय के अधिक चांस होंगे। विश्व के बहुत सारे ऐसे तटीय प्रदेश होंगे जो सही मायने में कोई 1 फुट, कोई 2 फुट, कोई 12 फुट, कोई 20 फुट समुद्र में समा जाएंगे, ये भी निश्चित है। यदि अभी देर नहीं हुई, आपके पास 50 वर्ष हैं अपनी गलतियों का सुधार करने का, सरकारों को चाहिए थोड़ी सी सख्ती ला। भारत सरकार ने कुछ वेस्ट मटेरियल और या फिर एक बार यूज करने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, केवल इतना करने से समस्याओं का निवारण नहीं होने वाला। कुछ शक्तियां विश्व को देशों से ऊपर होकर सोचनी होगी, इसके लिए कड़े नियम होने चाहिए, चाहे वह नासा हो, चाहे वह इसरो हो, ये केवल या फिर ज्योतिष हो, ये केवल गणनाएं कर सकते हैं। रोकथाम मनुष्य को ही करनी होगी, प्रकृति को बचाने का काम आपका और हमारा ही है। यदि किसी भी तरह से हम इस काम में फेल रहे तो याद रखिएगा, आप और हम जो अब लगभग 40-50 साल के हैं, ये थोड़े से समय में कट लेंगे, परंतु अपने आने वाले वंशजों को, अपने पूर्वजों की दी गई धरोहर सही मायने में क्या हम अपने वंशजों को सौंप पाएंगे? प्राकृतिक घटनाएं बढ़ रही हैं। इस वर्ष 2022 में मेरी की गई भविष्यवाणियों के अनुसार प्राकृतिक घटनाएं बढ़ेंगी। मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष भारत के स्तंभ कहे जाने वाले कुछ स्तंभ भी गिरेंगे, जिसमें से लता जी और कुछ और भी घटनाएं ऐसी हुई। ऐसी घटनाएं अभी बाकी हैं, मेरी गिनती अभी पूरी नहीं। इसके अलावा विश्व पर आतंकवाद या फिर कई प्रकार के संकटों की चर्चा भी मैंने आपसे की थी, और आप अगर पूर्व के कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो निश्चित आपको ये मालूम होगा कि स्वामी हरिहर द्वारा की गई प्रत्येक घटनाएं प्रत्यक्ष हो रही हैं। मैंने भविष्यवाणियों का जो दौर आरंभ किया था वो सन 99 से शुरू किया, तब से लेकर अब तक प्रत्येक घटनाओं में 90% से ज़्यादा घटनाएँ गणना के अनुसार हुई। जो लोगों ने कार्यक्रम नहीं देखा है वो देख सकते हैं। इस धरती को बचाने के लिए आप सभी का सहयोग कंपलसरी, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। सरकारों को भी चाहिए कि खनन के कामों पर रोक लगनी चाहिए। नदियों पर बनने वाले बड़े बड़े डैम जिसे हम बिजली के लिए बना रहे हैं, इसके लिए हमारे पास में सौर ऊर्जा एक समाधान है। डैमों से नदियों का जल को रोकना एक बड़ी मुसीबत हो सकता है, जिसका मुख्य ध्येय बहुत सारे देशों के लिए छोटे देशों को डुबोना भी है। अब चाइना अपने सीमा के अंदर में असम से ऊपर जो डैम बना रहा है, ये असम और बिहार तक को डुबोने की ताकत रखता है अगर थोड़ी सी निकलती होती है। नदियां जब उफान पर हो जाती हैं तो उन्हें कोई भी तूफान या फिर कोई भी बांध उन्हें रोक नहीं सकता। तो ये मानव के लिए और प्रकृति के लिए, हमारी संपत्ति जान माल दोनों का नुकसान कर सकता है। ऐसे में सरकारें चाहें तो बहुत जल्दी इस पर अंकुश लगा सकते हैं, एक प्रकृति को बचाने के लिए बड़ी तेजी से। जो ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण का मुख्य कारण है, तापमान को बढ़ाने में हमारे वाहनों का कारण है। बहुत सारे लोग एक घर में चार चार वाहनों का प्रयोग करते हैं, छोटा बच्चा अलग लेकर चल रहा है, माँ अलग गाड़ी चला रही है, सबके पास अलग है, और एक ही समय में 10-10 लोग घर के अलग अलग वाहनों में घूम रहे हैं, उसके पश्चात भी घर में 10-10 वाहन, एक एक घर में 20-20 एसी लगे हुए हैं, और ये एसी और ये वाहनों से निकलने वाला तापमान हमारे धरती के तापमान को बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। फ्रिज और एसी में डलने वाली गैसें भी हमारे वातावरण के लिए हमेशा नुकसानदायक मानी गई। अभी भी ये धरती आपके हाथ में है, रहने लायक है। आपको बता दो कि मात्र धरती के 2% लोग ऐसे हैं जो इस धरती से, धरती को छोड़कर दूसरे ग्रहों की खोज में जा सकते हैं, परंतु धरती की बढ़ती हुई पॉपुलेशन इस धरती को नहीं छोड़ सकती। ऐसे में इस धरती के साथ मरना तय समझ कर चलिए। धरती के लगभग 1% लोग या 2% लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से संपन्न हैं, जो आने वाले समय में विज्ञान का सहारा लेकर दूसरे ग्रहों की खोज कर सकते हैं और जा सकते हैं, और ऐसा होगा। परंतु ध्यान रखिएगा, मध्यम से लेकर, अगर आप अडवाणी की बात करते हैं तो वो भी मध्यम श्रेणी में आते हैं। आपको मैं बता दूं, एक पूंजीपति को अगर आप बहुत बड़ा पैसे वाला मानकर बैठे हैं तो आप मान लीजिएगा कि ऐसे लोग भी हैं, भले अरबों में खेल रहे हैं, परंतु उनको भी जब इस धरती से बाहर जाना होगा तो ये पैसा कम पड़ने वाला है। तो ऐसे में इस धरती को बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यही रहकर इस धरती को बचाया जाए। नए ग्रहों की खोज और नए ग्रहों पर जीवन यापन के लिए भागने से अच्छा है हम इस धरती को बचा लें। भारत के 130 करोड़ की जनसंख्या और विश्व की इससे कई गुना अधिक जनसंख्या धरती के लिए विनाश का कारण बन रही है। अगर जल्दी भारत या विश्व ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया, या फिर नदियों के पलायन पर, या फिर नदियों के उफानों पर कंट्रोल नहीं किया, या धीरे धीरे पिघलने वाले ग्लेशियरों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये धरती पॉल्यूशन की वजह से और ग्लोबिंग वार्मिंग की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आने वाले मात्र 30 वर्षों में गंगा भी लुप्त हो जाएगी। जो लोग गंगोत्री से ऊपर 22 किलोमीटर ऊपर जाकर गोमुख गए हैं या तपोवन जाकर आए हैं, जरा उन्हें अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार ये कहकर देखिए कि क्या सही मायने में आपको गंगा वैसे ही दिखाई दे रही है। आज से हजारों साल पहले जो गंगा गंगोत्री से निकलती थी, धीरे धीरे बर्फ के पिघलने की वजह से 22 किलोमीटर और पीछे जा चुकी, यानी कि गोमुख तक हो चुकी है। और गोमुख में भी ये स्थिति है कि जो गोमुख की तरह एक बड़ा गुफा दिखाई देती थी, पहाड़ों के गिरने से, पहाड़ों के खनन की वजह से, या फिर कोई भी प्राकृतिक या आपदा, या फिर मनुष्य के द्वारा किए गए तैयार अपवदा की वजह से, निश्चित गोमुख भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और धीरे धीरे ये पर्वत पीछे की ओर खिसकने लग रहे हैं, और तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो गोमुख आने वाले समय में तपोवन को भी पार करके और 10 किलोमीटर पीछे चला जाएगा, और देखते 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 जो भागीरथी पर्वत है वो भी पिघल जाएगा। ये भागीरथी का पिघलना धरती के लिए गंगा की समाप्ति का मुख्य कारण बनने वाला है। आने वाले 30 सालों में यदि भारतीय नहीं जागे, और जो लोग आज गंगा में अपने पितरों का अस्थि विसर्जन करने जाते हैं, कल को ये याद रख लीजिएगा कि अस्थि विसर्जन तो छोड़िए, आपको नालों में भी विसर्जन करने के लिए जगह नहीं मिलने वाली। इसलिए अभी भी समय है। हम सरकारों पर दोष देते हैं, सरकारें जनता पर दोष देती है, जनता उद्योगपतियों पर दोष देती है, और हम सब एक दूसरों पर अपने दोषों का रोग प्रतिरोपण करते रहते हैं। इससे धरती नहीं बचने वाली। हजारों सालों से हमारे पूर्वज धरती को बचाने के लिए अलग प्रयोग करते हैं। हमारे प्राकृतिक प्रयोगों में हवन का करना बादलों के निर्माण में बड़ा सहायक होता है। मंत्रों का उच्चारण के द्वारा धरती की धूरी और सूर्य के ताप को कम करने की ताकत कही गई है। वेदों में ऐसा प्रमाणित है, परंतु आज धरती पर ना तो कोई हवन होते हैं ना कोई यज्ञ होते हैं। सबको ये ढोंग और ढकोसे से लगते हैं, परंतु दूसरी ओर नासा आज इस बात को भी मानता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर एक खोज किया है। अगर आप चाहें तो नेट पर इसे ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आसानी से, कि हवन के द्वारा प्राकृतिक रूप से बादलों का निर्माण भी किया जा सकता है, वर्षा का निर्माण भी किया जा सकता है और पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। गाय के गोबर से बने हुए उपले, शुद्ध गाय के घी के द्वारा किए जाने वाला हवन या फिर ऐसा कोई भी कार्य निश्चित आपके वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो नासा की रिसर्च आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको वेदों की बातें, ब्राह्मणों की बातें, ऋषियों की बातें, संतों की बातें भले व्यर्थ लगती हों, परंतु विज्ञान के नाम पर आप तोते की तरह उछलते उछलते उसे सत्य मान ही लेते हैं। इसलिए जाइए, छानिए, ज्यादा अच्छा है।